अयान गौरवी जी से मिलने के लिए गया हुआ था। इस बीच मंथन मौका देखकर आयु के पीछे उसके होटल तक आ गया था। अपने गुस्से और जिद में मंथन ने आयु को हर्ट कर दिया था। न केवल वो आयु के साथ जबरदस्ती कर रहा था, बल्कि बचने के लिए आयु लड़खड़ाकर गिर भी गई थी, जिसकी वजह से उसके माथे पर चोट लगी थी। इस बीच अयान वहां पहुंच गया था। कमरे की स्थिति देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या चल रहा होगा। ऊपर से आयु रो रही थी। अयान को देखते ही आयु बौड़कर बाथरूम में चली गई और खुद को अंदर बंद कर लिया था। वहीं मंथन को अच्छा खासा सुनाने के बाद अयान ने उसे वहां से निकाल दिया था। जिस तरह से आज ऑफिस में आरव ने तो शाम को होटल में मंथन ने आयु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उससे अयान को आयु को अपने वहां लाने के फैसले पर अफसोस हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि ना तो आरव और ना ही मंथन आयु के लायक हैं। मन तो कर रहा है कि एक बार फिर तुम्हें इन सबसे दूर किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां इन सबका साया भी नहीं पड़ सके। कितना अच्छा होता जो इन्हें पता ही नहीं होता कि तुम कहाँ हो। पहले मुझे यही लगता था कि तुम्हें अकेले रहने की आदत हो गई है, तुम बस सिचुएशन से भागना चाहती हो, लेकिन सच तो ये है कि ये लोग फेस करने लायक ही नहीं हैं, अयान ने दांत भींचते हुए मन ही मन कहा। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी आयु के रोने की आवाज़ सुनकर अयान का ध्यान टूटा और वो जल्दी से दौड़कर बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया था। हालांकि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, लेकिन फिर भी अयान की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो आयु के पास जा सके। अयान ने गहरी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। वो बहुत प्यार से धीमी आवाज़ में बोला, आयु, आयु तुम सुन रही हो ना मुझे? अयान की आवाज़ सुनकर आयु ने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो फर्श पर अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठी हुई थी। आयु ने कोई जवाब नहीं दिया तो अयान आगे बोला, मैं तुमसे किसी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, ना ही यहाँ क्या हुआ था उस बारे में मुझे जानना है। हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। प्लीज़ बाहर आ जाओ। तुम्हें माथे पर चोट लगी है ना, हम डॉक्टर के पास चलें। अयान काफ़ी प्यार से आयु से बात कर रहा था। वो किसी तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था और उसके फैसले का इंतज़ार करते हुए दरवाजे पर खड़ा हो गया था। आयु धीरे से उठी और उसने दरवाज़ा खोला तो अयान उसके लिए थोड़ा साइड हो गया था। अयान ने एक नज़र आयु की तरफ देखा, जिसका रोने की वजह से चेहरा लाल हो गया था। उसके माथे पर हल्की सी सूजन आ गई थी और एक हल्का सा कट लग गया था, जिस पर थोड़ा बहुत खून सूख चुका था। तुम बाहर नहीं जाना चाहती तो मैं रिसेप्शन पर जाकर किसी डॉक्टर को भेजने के लिए कह सकता हूँ, हम किसी फीमेल डॉक्टर को ले आएंगे, अयान ने काफ़ी नरम लहजे में कहा। आयु ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिला दिया था। ठीक है, फिर चेंज कर लो, मैं अभी डॉक्टर लेकर आता हूँ, और दरवाज़ा लॉक कर लेना प्लीज़, अयान ने चिंता भरे स्वर में कहा और फिर वहां से बाहर चला गया था। अयान के जाते ही आयु ने चेंज किया और फिर वो बेड पर लेट गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखों में मायूसी छाई हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद अयान एक लेडी डॉक्टर के साथ आयु के कमरे के आगे था। अयान का चेहरा उतरा हुआ था। डॉक्टर को यही पता चला था कि एक गेस्ट को कमरे में गिरने से चोट लग गई है। आप बाहर रुक जाइए, मैं आपकी वाइफ को देख लेती हूँ, डॉक्टर शाह बोली। वो मेरी, अयान ने तुरंत सफाई देनी चाही कि आयु उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन वो बोलते हुए रुक गया था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन वो बेटर महसूस नहीं कर रही है, अगर वो बात नहीं करना चाहे तो प्लीज़ आप फोर्स मत कीजिएगा। ओके, डॉक्टर ने जवाब दिया और फिर अंदर चली गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे के अंदर आई, उन्होंने कमरे की हालत देखी, जहाँ का सामान थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। बिस्तर पर आयु चुपचाप लेटी हुई थी, उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और चेहरे पर खामोशी छाई थी। वो बस लेटी हुई छत की सीलिंग को देख रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ सीरियस हुआ होगा, ऊपर से इसका हस्बैंड भी इसे कुछ पूछने से मना कर रहा था, डॉक्टर ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा और फिर आयु के पास जाकर सख्त आवाज़ में बोली, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये चोट कैसे लगी है, और कहीं आपके पति ने तो आपको नहीं मारा? अंदर आने से पहले उसने मुझे साफ हिदायत दी थी कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछूं, और वो डरा हुआ लग रहा था। क्या उसने तुम्हें किसी से कुछ कहने से मना किया है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और हम पुलिस बुला लेंगे, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उन डॉक्टर के सामने पहले भी ऐसे बहुत सारे केस आए थे जहां डोमेस्टिक वायलेंस के चलते औरतें चुप रहती थीं और अपनी चोट को अक्सर किसी एक्सीडेंट का नाम देने की कोशिश करती थीं। डॉक्टर ने कई लोगों की मदद भी की थी, जबकि कुछ औरतों ने सामने से कुछ भी बताने से मना कर दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर आयु ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, वो मेरा पति नहीं है। तो क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स और एनजीओ को जानती हूँ जो तुम्हारी आगे भी हेल्प करेंगे। डॉक्टर अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें यही लग रहा था कि आयु के साथ भी अयान ने कुछ गलत किया है। आयु ने गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, और बाहर जो खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है, आयु ने सफाई देने के बाद बातचीत का रुख बदलते हुए आगे कहा। मेरी चोट पर बहुत दर्द हो रहा है और मुझे थोड़ी देर सोना है, क्या आपके पास कोई स्लीपिंग पिल है? डॉक्टर ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आयु को इंजेक्शन लगा दिया था।
अचानक उनकी नजर आयु के हाथों पर गई, जहां मंथन की उंगलियों के निशान बने हुए थे। डॉक्टर ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी बातों और पर्सनालिटी से तुम सेल्फ डिपेंडेंट और काफी बोल्ड लग रही हो। उम्मीद है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं कर रही हो। आयु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। जब डॉक्टर बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा अयान अभी भी बाहर आने के लिए परेशान खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आयु के कमरे से निकल जाने के बाद मंथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या हो गया था और वो आयु के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। उसे इन सब के बारे में सोच सोचकर खुद से घिना रही थी। अगली सुबह अलार्म की आवाज के साथ आरव उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा था। हमेशा उसे इतनी जल्दी नहीं रहती थी, लेकिन आज फिर से डिजायर्स और सेलिब्रेशन के बीच मीटिंग होने वाली थी। जाहिर सी बात थी, आयु मीटिंग अटेंड करने वाली थी और यही सोचकर आरव इतना एक्साइटेड हो रहा था। आज की मीटिंग में मंथन को इस प्रोजेक्ट के बजट से लेकर बाकी चीजों की प्रेजेंटेशन देनी थी। आरव ने उसे भी याद से मैसेज कर दिया था, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। जैसे ही आरव डिजायर्स पहुंचकर अपनी गाड़ी से बाहर निकला, उसे सामने से मंथन आता दिखाई दिया। वो परेशान लग रहा था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, और इस तरह तुम मीटिंग प्रेजेंट करने वाले हो, आरव ने उसे घूरते हुए कहा।
आरव मंथन से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जिसे मंथन समझ गया कि कल रात जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चला था। लेकिन साथ ही मंथन को इस बात का डर भी सता रहा था कि वो आयु का सामना कैसे करेगा, क्योंकि वो भी मीटिंग अटेंड करने वाली थी। मंथन आरव की बात का जवाब देने की बजाय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। आरव ने चिढ़कर कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर चले जाओ। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिनका काम में ध्यान नहीं होता है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं हाफ डे की लीव ले सकता हूँ, मंथन ने हल्का हिचकिचाते हुए पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था, जबकि उसके हाँ कहते ही मंथन भी वहां से निकल गया था। अजीब बात है, मुझे लग रहा था कि ये मेरा कंपेटिटर बनने वाला है, लेकिन ये तो खुद आयु के सामने नहीं आना चाहता। खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसने मंथन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सीधा केबिन में पहुंच गया था। वहीं मंथन को फाइल्स के बारे में याद आया तो वो डिजायर्स से जाने के बजाय अंदर चला गया था। जिस वक्त मंथन डिजायर्स पहुंचा था, ठीक उसी वक्त अनुष्का भी वहां पर आई थी। वो गाड़ी में बैठी आरव और मंथन को देख रही थी। मंथन खोया हुआ लग रहा था। अनुष्का तुरंत मंथन के पीछे जाने लगी। मंथन मीटिंग रूम में गया था और वहां से कुछ फाइल लेने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ा था कि दरवाजे पर अनुष्का खड़ी हुई थी। रुको मंथन, अनुष्का ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। क्या तुम आज की मीटिंग अटेंड नहीं करने वाले हो? तुम जानते हो ना कि तुम्हारा आज होना जरूरी है। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है और मुझे अकेला रहना है, प्लीज तुम चली जाओ यहां से, मंथन ने बुझी हुई आवाज में कहा। इस हालत में तुम्हें मैं अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ है, दर्द बांटने से कम होते हैं, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं, अनुष्का ने जिद करते हुए कहा। मंथन ने एक नज़र अनुष्का की तरफ देखा, वो मायूसी से बोला, लेकिन मेरा दर्द कोई कम नहीं कर सकता है, उल्टा तुम्हें पता चलने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, या हो सकता है कि इसके बाद तुम मेरा चेहरा भी ना देखना चाहो। ये डिसाइड करने का हक मुझे है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, अनुष्का ने जवाब दिया। अनुष्का की इतने फोर्स करने के बाद भी मंथन ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसकी ये खामोशी अनुष्का को अंदर ही अंदर डरा रही थी। अनुष्का ने मंथन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, ये आयु से जुड़ा हुआ है ना? मंथन के चेहरे पर अफसोस और पछतावे के भाव देखकर अनुष्का को समझते देर नहीं लगी। उसने मंथन के हाथ पर अपनी पकड़ टाइट की और सख्त आवाज में कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्योंकि तुम नहीं बताओगी तो मैं आयु से पूछ लूंगी। कहीं उसने ये तो नहीं कहा कि वो आरव के साथ रहने के बारे में सोच रही है? वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है जो बार बार इस इंसान के पास जाना चाहती है जो उसे हर्ट कर रहा है? अनुष्का गुस्सा हो गई थी और उसे यही लग रहा था कि मंथन की इस हालत के पीछे आयु का हाथ है। इससे पहले कि अनुष्का आयु को और भला बुरा कहती, मंथन ने नामे सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हो। उसकी गलती नहीं है, इस बार गलती मुझसे हुई है, और न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं, मंथन बोलते हुए रुक गया था और उसे ये कहते हुए भी शर्म आ रही थी कि कल शाम उसने क्या किया था। क्या किया है तुमने मंथन, अनुष्का ने दोहराते हुए पूछा। मंथन ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर कल रात जो भी हुआ था उसके बारे में अनुष्का को बता दिया था, किस तरह वो अपने जज्बातों में बहकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था और इस चक्कर में उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो आयु को तकलीफ दे रहा था।
अगर सही टाइम पर आयु की बातों से उसे होश नहीं आता तो शायद वो कल रात आयु के साथ वो कर जाता जिसकी किसी ने गलती से भी उम्मीद नहीं की थी। बोलते हुए मंथन की आंखों में आंसू आ गए थे तो वहीं अनुष्का ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया था। मंथन अनुष्का के सामने बेबस खड़ा था आंखों में आंसू लिए, लेकिन सच जानने के बाद अनुष्का की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो मंथन को ये तक कह सके कि उससे ये अनजाने में हुआ है। वो बस आयु का सोच रही थी और उसे इस वक्त अपने सामने खड़े मंथन तक का ख्याल नहीं था। इस बीच आरफ मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा उनकी सारी बातें सुन चुका था। चलो, आरफ को पता चल गया है, देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।